ولقد آتینا لقمان حکمہ، حکمت کی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے مزید دہرانا چاہوں گی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حکمت کیا ہوتی ہے تو ابھی تک جو بات ہوئی آپ اس سے کیا سمجھے؟ چند لفظوں میں حکمت اور عقل اور حکمت اور فطرت کا تقابل کر لیتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا، درست فیصلہ کرنے والا ہو، یہ حکمت سکھاتی ہے، اور عقل جو ہے یہ انسان کو وقتی فائدوں پہ اور نقصان پہ اکساتی ہے۔ جی آپ پیچھے سے۔ یعنی حکمت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور جسمانی جو فائدے ہیں جسم کے ساتھ عقل کا تعلق۔ میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا واضح کروں گی ابھی، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ ابھی پوری طرح بات نہیں ہوئی۔ جی، جتنا فطرت کے قریب ہوگا اتنی ہی اس کے اندر حکمت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور جی آپ ادھر سے۔ شاباش، کہ عقل جب نیچے ہوتی ہے، فطرت اس کے اوپر ڈومیننٹ ہوتی ہے تو حکمت ہوتی ہے، اور اس کا اپوزٹ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل اوپر آ جائے، فطرت نیچے چلی جائے تو فلسفہ بنتا ہے۔ تھوڑا سا دہراتی ہوں، آپ لوگ نوٹس لے لیجئے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جو پیدا کی ہیں اس میں سے ہمارے سامنے انسان اور جانور ہیں، جن ہیں نہیں اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ موجود ہی چیزیں جو ہیں اگر آپ تقابل میں دیکھیے تو انسان اور جانور دونوں کے رویوں کا ذرا فرق نوٹ کر دیجئے۔ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ انسان بھی ایک خاص سلسلے سے گزر کر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جانور بھی اسی کے ذریعے سے گزرتے ہیں۔ ہر ایک کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے کا طریقہ فرق ہے، کوئی انڈے میں سے نکلتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن دونوں ہی دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے فوراً بعد سے انٹرٹین کرتے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو سنبھالنا، کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ فوراً ماں اس بچے کو دودھ پلائے گی، اگر مرغی بھی ہے تو اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم ساتھی کی کمپیئر کر لیں تو انسان بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ یہ بات سب کو سمجھ آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ بچہ میری آف سپرنگ ہے، اس بچے نے آگے جا کے میرے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کا ذریعہ بننا ہے۔ لیکن ایک فرق جو فوراً آ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جانور اپنے چھوٹے بچوں کی، پیدا ہونے والے بچوں کی اور ان کی بڑھنے تک خدمت تو کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑوں کو نہیں دیکھتے، بزرگوں کو نہیں دیکھتے۔ جیسے ایک دفعہ جو نکل گیا وہ نکل گیا، جبکہ آپ دیکھیں تو انسان، اور خاص طور پہ انسانوں میں ہم مسلمز کو لے لیں، ہم اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب اس کو آپ اس اپنے اس عمل کو عقل پہ پہلے پرکھیں۔ یہاں بھی میں لفظ عقل یا فلسفہ بولوں نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جس حکمت پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ نہ ہم فلسفے کے خلاف ہیں نہ ہم عقل کے خلاف ہیں، ہم اس وقت ساری بات جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہا کاف میم اس کا روٹ ہوتا ہے، حکم بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کہ صحیح وقت پہ انسان صحیح فیصلہ کرے۔ انسانوں میں حکمت ہوتی ہے، جانوروں میں نہیں ہوتی۔ جو مثال آپ کے سامنے رکھیے اس کو محسوس رکھیے کہ جانور بچوں کو تو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ان کو بتاتی ہے کہ یہ بچے کل تمہارے کام آئیں گے اور تم نے ان کو فائدہ دینا ہے تاکہ کل فائدہ لو، لیکن جانور اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے کیونکہ عقل یا فلسفہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں کیا۔ انسان ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن عقل سے اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ مثلا بوڑھے لوگوں کی ہم خدمت کیوں کرتے ہیں؟ عقل سے پوچھیں، نمبر ایک، بوڑھے تو اب ایک قسم کے ریڈنڈنٹ ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں دیں گے، نہ انہوں نے جوان ہونا ہے، نہ انہوں نے کل ٹھیک ہو کے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ اس کے برعکس بچوں سے فائدے بھی ہیں، امیدیں بھی ہیں، اور انسان اس کو دیکھتا ہے۔ تو انسان جتنا صاحب حکمت ہوگا وہ اپنے بڑوں کی خدمت کرے گا۔ اب کسی دنیا کی کورٹ میں کوئی لے جائے اور آپ کو کہے کہ پروو کیجئے عقل کی بنیاد پہ کہ تم بزرگوں کی خدمت کیوں کرتے ہو، تو واقعی نہیں کر سکتے آپ، آپ کوئی پروو نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ ان کو اپنی فطرت کی بنیاد پہ کہیں گے کہ یہ میری فطرت میں ہے کہ انہوں نے بھی مجھے اس وقت پالا پوسا تھا جبکہ میں کمزور تھا۔ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے دیکھیے رشتوں کی، محرم رشتے اور غیر محرم رشتے۔ عقل سے پوچھئے کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، ان کا نکاح کر دو۔ عقل آپ کو اس کے 10 دلائل دے گی، بہت اچھی بات ہے، گھر کی بچی ہے، بہت فائدہ دے گی، اور مزاج بھی ایک ہے، گھر سے شروع سے اس مرد کو بچے کو جانتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نو، اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، جہاں ہم کہتے ہیں نا तो अंडर दी टेबल ये असल में फितरत कहती है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। आप कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि भाई और बहन का निकाह ना करो। अब कोई फलासफी या बहुत ज़्यादा रैशनल किस्म का शख्स है वो आपसे कहता है कि इसकी दलील दो कि आखिर अपनी बहन और गैर औरत के अंदर फ़र्क किस चीज़ का है। अब आप कोई फ़र्क नहीं बता सकते, फिजिकली दोनों एक जैसे हैं, सब कुछ है। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के दौर में लोग कह दें कि जी एक जगह हैं तो जीन्स एक जैसे हैं तो बीमारियाँ लग जाएंगी, जैसे आज क्लोज रिश्तों में लोग रिश्ता करते हुए ये कुछ सोचते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, गैरों में भी रिश्ते होते हैं लेकिन उसके बावजूद वहाँ बहुत खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, और बहुत सारी कज़न मैरिजेज ऐसी हुई हैं कि उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिफॉर्म्ड बच्चे नहीं है। अब इस मसले को आप अक्ल से नहीं बता पा रहे, ये आपको फितरत बताएगी। फितरत को अक्ल से जब जुदा कर देते हैं, समझ रहे, जब अक्ल अलग होती है, थोड़ा सा अक्ल को भी समझिए। अक्ल क्या है? ऐन काफ लाम। अक्ल का लफ्जी माना होता है रुक जाना या रोक देना। एकाल अरब लोग उस रस्सी को कहते थे जिसको ऊंट को बांधने के लिए इस्तेमाल करते थे। हम लोगों ने चूंकि सहराओं में सफ़र नहीं किया तो हम इसको इमेजिन नहीं करते, लेकिन ऊंट जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा सरकश जानवर है, अपने मालिक के बस में नहीं आता। अब सहरा में चल रहे हैं, रात को आराम करना चाहा, अब क्या करेंगे? जब आप उस ऊंट को खुला छोड़ देंगे तो भागेगा। आप कहते हैं कि किसी दरख्त से बांधो, कहाँ बांधो, दरख्त होते ही नहीं है सहराओं में। तो अरब लोग क्या करते थे कि सफ़र पे जब निकलते थे तो एक रस्सी लेकर अपने साथ चलते थे, सर के ऊपर ये जो चादर बांधते हैं ना, आज भी आपने अरबों को देखा होगा कि एक स्काफ नुमा चीज़ होती है और उसके इर्द गिर्द एक रिंग होता है। आज तो वो खूबसूरती के लिए ना, फैंसी हो या कुछ भी है। पहले दौर में लोग घर से निकलते थे तो वो एक रस्सी सर पर बांध लेते थे, जहाँ स्टॉप लेना होता था ना उस रस्सी को खोला और ऊँट की तीन टांगे बांध देते थे। जब उनकी तीन टांगे बांध दी जाती है तो वो खड़ा नहीं हो सकता, तो ऊँट भी सो जाता था, ये भी सो जाते थे। सुबह जब उठते थे तो ऊँट को खोला तो वो रस्सी किधर रखें, घूम जाएगी, उसको सर पे बांधते थे। उस रस्सी को एकाल कहते हैं। अब एकाल, अकल, इस सारी चीज़ों को समझें, रोक देना। अकल क्या है? असल में हमें रोकती है, लेकिन अकल की नज़र बड़ी कमज़ोर है। शॉर्ट टर्म नुकसान से बचाती है और शॉर्ट टर्म फ़ायदे सुझाती है। मसलन आपने आइसक्रीम देखी, आप कहते हैं खा लूँ, अकल कहती खा लो मज़ा बहुत आएगा, ये आपकी अकल है। लेकिन अगर आप अकल को थोड़ा सा पीछे डालें, फितरत को गालिब करें, अपने ऊपर से रोल करें, आप कहते हैं देखो अगर एक से ज़्यादा आइसक्रीम खा ली वेट गेन हो जाएगा, बाहर सर्दी है जुकाम हो जाएगा, तो अकल हमेशा दिफा करती है शॉर्ट टर्म थिंग्स का। वो कहेगी मज़ा करो, बाहर आइसक्रीम खा लेना, बाहर चाय। तो अकल छोटे फ़ायदों से बचाती है। मसलन आप देखिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, उस वक़्त इब्राहिम की थी। अब आप इमेजिन करें कि अगर इब्राहिम अकल परस्त होते, या आज की ज़बान में कह लें कि फ़िलासफ़र होते, तो अकल ने क्या सिखाना था? देखो इब्राहिम, तुम अभी दुनिया में अकेले मवाहिद हो, तुम भी मर गए तो फिर इस्लाम किसको मिलेगा? आज हम यही सोचते हैं ना, ये सोच सोच कर हम नॉन मुस्लिम्स की बातें माननी पसंद करते हैं कि नहीं देखो हम ज़रा उनके करीब होते हैं फिर उनको हम अपने से माइल कर लेंगे, और माइल होने से पहले हम उनसे कायल हो चुके होते हैं। अकल ने तो कहा होगा कि इब्राहिम आप आज कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आज जान बचाएं, और अल्लाह को आपकी मजबूरियां पता है। लेकिन इब्राहिम साहिब अकल नहीं थे, साहिब हिकमत थे। उन्होंने छोटे नुकसान को बर्दाश्त किया, उनको तो नहीं पता था कि आग ठंडी हो जाएगी, कुल ना या ना रुकूनी बर्दन वाली बात उनको नहीं पता थी। उन्होंने कहा जल जाऊंगा ना, ख़त्म हो जाएगी, कल मैं एक बड़े नुकसान से बच जाऊंगा। तो फिर कह लीजिए हिकमत बंदे को लॉन्ग टर्म नुकसान से बचाती है। एक जुमला लिख लीजिए, हिकमत की तारीफ समझ आ जाएगी, छोटा नुकसान करके बड़े नुकसान से बच जाना, यह हिकमत सिखाती है। साहबा की सारी कुर्बानियां ले लीजिए, वो तबूक का सफर हो या दूसरा कोई सफर हो या कोई अमली मौका आए, उनका यही असूल था कि आज इस दुनिया के चार दिन के नुकसान कर लो, आखिरत का नुकसान ना करो। आज भी देखिए बाज़ दफ़ा इंसान की अक्ल गालिब आती है, वो कहते हैं मैं इधर क्यों आती हूँ, क्या मिलता है मुझे इधर आके, इतना वक्त कहीं बाहर लगाऊं तो कितने हज़ार मिल जाएं, इधर ना आऊं घर कितना साफ हो जाए, इधर ना आऊं मियां साहब कितने खुश हों। आप 101 फ़ायदे लिखें, आपकी अक्ल आपको यूं पट्टी पढ़ाएगी कि आप कहेंगे बस आज सारी बात समझ आई है, आज तक जो मैं इधर आ रही थी ये बेअक्ली का फैसला था, मैं अपना कितना नुकसान कर रही हूँ और इसकी तो कोई एंडिंग लाइन ही नहीं है, ये कब ख़त्म होना है, और मेरे करने से क्या होगा, और अब तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये अकल है। इसके ऊपर एक बिग क्रॉस लगा के वही बंदा इन सब को अपनी फितरत पे ले आएगा। मैं इधर इसलिए आती हूँ कि मेरी फितरत को सुकून मिलता है, मुझे कुछ करने का फायदा मिलता है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को रंग लगा दिए, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। जो ही आप लॉन्ग टर्म चीजों के आएंगे ना, तो ये आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, घर में भी सो ही रहना था, काम तो सारा दिन खत्म नहीं होते, बच्चे तो स्कूल में होते हैं, मियाँ जी ने तो वैसे भी इस वक्त घर नहीं होना। जो ही आप अपनी फितरत में आएंगे ना, तो आपका फैसला क्या होगा, आई विल डू दिस। ये जहां भी हम कहते हैं ना मजबूर है, आई एम फुला फुला फुला, हम सभी सोचते होंगे अपने अपने हालात को, समझो उस वक्त हमारी अकल हमें मिसलीड करती है। बस खत्म, बहुत देर से ये जंग चल रही है घर में, चल मैं कहती हूँ आप आज कहें कि मैंने इस कोर्स को नहीं करना, सुबुल इस्लाम हो गया, अब नूरुला नूर में कूदने की क्या जरूरत है। और कुछ लोग ये फैसले करेंगे आप लोगों में से, और वो आज नहीं आए होंगे, या हो सकता है अल्लाह ना करे आप में से भी कोई रुक जाए। क्या सोच के क्या करना है, बस कुरान पढ़ना था, पढ़ लिए, पढ़ लिए, टेस्ट लेके देखे, नमाज ठीक हो गई, ये अमल में आए, जीरो। ये तो बार बार का सीखना, आपकी अकल आपको कहेगी बस करो, खत्म, दैट्स इट, वापस स्कूलों में जाओ, वापस जॉब्स पे जाओ, शादी करवाओ, क्या मुसीबत गले को डाल ली, हर वक्त के फिक्रें। लेकिन आपकी फितरत आपको बताएगी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आपकी फितरत बताएगी कि खाती तो रोज हूं, जब से पैदा हुई हूं तब तक खा रही हूं, ये तो नहीं कहती कि अब खा लिया जितना खाना था अब छोड़ दूं। तो लिहाजा हकीम इंसान वो होता है जो अपनी फितरत के जज्बों को प्रमोट करता है, और फितरत इंसान की जो है ना ये शिर्क बर्दाश्त नहीं करती, ये भी याद रखिए। जानवरों में फितरत नहीं होती, ये जिस फितरत पे हम कह रहे हैं ना कि फितरत अल्लाह हिल्लती फौतरन नास अलैहा, सूरह रूम की आयत पढ़ रहे हैं पीछे से, नास का लफ्ज है वहां, पूरी इंसानियत का लफ्ज नहीं है, क्योंकि जानवरों में फितरत नहीं होती, और जब फितरत नहीं होती तो मोरलिटी नहीं होती, बुरे भले का फर्क नहीं है, ओरल सेक्स है, उसका कपल उसके साथ बेलिबास फिरते हैं, उनको फिर उसका जानवर ने झपटा खा लिया। इंसान में फितरत है, और फितरत सिखा रही है कि तुम झूठ ना बोलो, फितरत सिखा रही है गीबत ना करो। अब आप देखिए कि लुकमान का जिक्र कर रहे हैं ना हम, तो लुकमान साहिब हिकमत थे, ना तो ये नबी थे ना नबी की उम्मत थी, इनका भी कलाम जो अगले सबक में हम पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा उसमें कि ये सारी बातें वही के इल्म की नहीं है। और ये हमारे लिए इस बात की दलील है कि जिस बंदे की फितरत सलामत है, आज वो जमीन के किसी कोनों में छुपा हुआ है, गारों में, पहाड़ों में, इंशाल्लाह कल क्यामत के दिन बगैर किसी डायरेक्ट दावत के पुकार के पहुंचने के भी वो इस्लाम पे होगा। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिकमत अता करे। एक और कोड वर्ड लिख लीजिए, बात और भी समझ आएगी, और ये बातें एक दिन में नहीं समझ आती, बस इसको सुनिए, समझिए और अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अक्ल सलीम जब फितरत सलीम की रोशनी में काम करती है तो हिकमत मिलती है। बस मुझे तो ऐसे लगता है कि फितरी जिंदगी पे आप देखिए कि हिटलर के अकलमंद नहीं था, जीनियस था, लेकिन अकल जब फितरत से कटती है तो इवल जीनियस हो जाती है। जिन लोगों ने कल इतने बच्चों को ज़िबा कर दिया, क्या वो अकलमंद नहीं है? क्या उन्होंने अकल इस्तेमाल करके नहीं ज़िबा किया? किया, लेकिन उनकी जरूरत कैसे हुई? आप देखिए एक बंदा बड़े को मारे, अपने बराबर के को मारे, एक बच्चे को कब मरता है? जब अकल फितरत से कट जाती है, दरिंदगी आ जाती है। इंसान और जानवर में फर्क नहीं रहता, उन्होंने कुछ जाती इंटरेस्ट के लिए, कुछ ग्रजिस के लिए और एक खास ग्रुप को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा फैसला कर लिया कि वो इतने बेगुनाहों को मारे। अकल में आता है कभी कि कोई किसी बच्चे को मार सकता है? तो ये हिकमत ना होने की दलील है। इसीलिए हम सबको भी अपने लिए चाहिए, देखिए कि अब कुरान हम पढ़ रहे हैं ना, तो जितना हमारे अंदर हिकमत आ रही है उतनी ही हमारे अंदर शुक्रगुजारी भी आनी होगी। मैंने तो इस दफा इस सूरत को पढ़ने के अंदर से जो बुनियादी, जिसको कहना चाहिए ना, कहते हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया नुक्ता, वो नुक्ता मिला है शुक्र का नुक्ता। मुझे हिकमत चाहिए, शुक्रगुजार हो जाऊं। अगर मेरे अंदर किसी के लिए शुक्रगुजारी है, मसलन आपकी ये किताब है, अल्लाह ने मुझे इस किताब की खिदमत का मौका दिया, जितनी मैं इसके लिए शुक्रगुजार होती जाऊंगी ना, उतनी अल्लाह ताला मुझे राहें दिखाता जाएगा, उतना मुझे लगेगा कि वाकई मैं इसका हक अदा करूं। अल्लाह तूने मुझे चुना, अल्लाह तेरी बात, तेरी देन, तेरी नेमत है, अल्लाह मुझे इससे पीछे ना करना। आज अगर मैं अपने दिल से शुक्रगुजारी निकालूं, मैं कहूं क्या मुसीबत है, इनको तो कोई शौक नहीं है तो मैं क्यों इनके पीछे फिर रही हूं, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों अपने घर ना बैठूं, मैं क्यों इधर ना जाऊं, मैं ना करूं, एक सेकंड लगता है अक्ल पलटते हुए। क्या मजा था ये छुट्टियां अपने पाकिस्तान जाके गुजारते, खाते पीते मिलते मिलाते। ये कब होता? जब मेरे दिल से इस नेमत की कदरदानी निकल जाती कि अगर मैं इन कुछ दिनों में किसी को कोई फायदा दे सकती हूँ तो दे दूँ, क्योंकि अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत मेरे पास है। और याद रखिए कि अगर आपके दिल में इस किताब की अभी तक कदरदानी नहीं आई ना, तो बहुत खतरा है आपको। किसी वक्त आप छोड़ देंगे, एनी टाइम छोड़ देंगे। बाद में मजबूरी होती है, हम निकल नहीं पाते। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जैसे एक बंदा जहाज में सवार हो गया ना और जहाज उड़ गया, अब वो नहीं निकल सकता। कई लोग दीन के कामों में बस इसी तरह फंस गए, अब करें क्या। लेकिन याद रखिए, एमरजेंसी एग्जिट हर जगह होते हैं, हादसा हर जगह हो सकते हैं। हम सब इतने रिस्क में हैं, जब तक शुक्र नहीं करेंगे, कदरदानी नहीं करेंगे, अल्लाह की इस नेमत को बड़ा नहीं समझेंगे, अल्लाह ताला आपको मौके नहीं देगा। और जब शुक्र आता है ना, तो फिर इंसान सबसे बड़ी नेमत जो हमारे पास इस वक्त है ना, वो जिंदगी की नेमत है, इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इल्म है, इल्म की कदर शुरू कर देता है। इतना वक्त लगा के आती हूँ इधर, तर्जमा फिर भी नहीं जाके याद करूंगी। इतनी देर इधर बैठी, तजवीद की क्लास हुई, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करूंगी। जब आपको इस इल्म की कदर आएगी ना, तो आप इस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे। सब चीजें भूल जाएं, अभी कुछ नहीं आपने और करना, पहले इल्म सीखना है, क्योंकि इल्म जो है वो अल्लाह की खशियत देता है। फिर आप आएंगे, फिर आप अपने वक्त को नेमत समझेंगे। वो लोग किधर हैं जो आज कब्र में चले गए, उनका क्या खत्म हुआ, उनका वक्त खत्म हो गया। फिर आप सिर्फ वक्त गुजारेंगे नहीं, आप बेहतरीन करेंगे। जब ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ तो थोड़ा क्यों करूं, टेक लगाए बगैर सीख सकती हूँ तो टेक क्यों लगाऊं, इस कमरे में बैठ के सीख सकती हूँ तो दूसरे में क्यों जाऊं, जब फोकस हो सकती हूँ ये काम बाद में भी तो हो सकता है तो अब क्यों करूं। ये हिकमत से आता है, नसीब है। यकीन करें, हमारी हिकमत जो है ना, ये हमारे नसीब के साथ गुंधी हुई है। साहिब हिकमत शख्स जो होता है ना, वो थोड़े वक्त में ज्यादा फायदा ले लेता है, थोड़ा माल इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छी शॉपिंग करके आता है। और बेवकूफ जो है ना, वो बाहर से देखेगा एक रैक में चीज लगी, वो सबसे महंगी होगी, सबसे अट्रैक्टिव होगी, पकड़ के ले आएगा, घर आके एक दो दफा पहनने का दिल भर जाएगा। वो बेवकूफ होगा, क्योंकि उसने वक्त ही फायदा ढूंढा। हिकमत अल्लाह कहते नहीं, देखो सेल किधर है, आज क्यों मैं शॉपिंग करूं, एक हफ्ते बाद सेल लग जाएगी, फिर ले लूंगी अगर कोई जरूरत है। ला के कौन सी मैंने चीज़ अभी इस्तेमाल करनी है। बस दफा आप देखिए, हम घर के किचन के कामों में हिकमत का इस्तेमाल नहीं करते, चीज़ें हमारी बेहिकमती की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। आज ये चीज़ पक जाएगी तो अच्छी है, फ्रेश है, दो दिन फ्रिज में पड़ी रही है, धनिया गल जाएगा, फेंकना पड़ेगा। जो हमारे घर का ट्रैश है, जो चीज़ें वेस्ट होती हैं, ये हमारी हिकमत की कमी की वजह से होती है। आपको समझ आ रहा है कि ग्रेप्स आए हैं घर में, ये जितने खाने थे खा लिए हैं, अब इसका नसीब यही है कि ये रोड ढीले होंगे और आखिर काले होंगे, और फिर आप इसको बिन में फेंक देंगे। आपको समझ आ गया, आप अगर साहिब हिकमत हैं, आप फौरन उसको धोएंगी, डंडियां उतारेंगी, उसको फ्रीज कर दे। वो इतनी मजे की कैंडीज हैं, आप उसको कल खाएं, चाट में डालें, आप उसकी स्मूदी बनाएं, आपकी चीजें जाया नहीं होंगी। तो एक इंसान का अपनी जिंदगी के मामलात को आसान दर्जे पे लेके चलना, ये हिकमत है। बास खवातीन को आपने पाकिस्तान में देखा होगा, 5,000 तनख्वाह शौहर की, बड़ा अच्छा गुजारा करती हैं, खुद भी अच्छे हैं, जो आता है उसको तो बहुत ही अच्छे बन के दिखाते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके हाथों में 20-25 हज़ार भी पकड़ा दें, वो कहेंगे आते ही कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं। वजह क्या है कि बाजार में जाके एक जोड़ा ही उनको 5,000 का पसंद आ जाता है, जो सिर्फ एक दफा इस जिस्म पे चलना है और खत्म। हिकमत की कमी की वजह से माल कम होता है। इसी तरह आप करें क्या, एक एक नेमत लिखें। आप अपने पास ऐसे कर सकते हैं कि एक लाइन है नेमत की, उसके नीचे लिखे नेमतें, जिंदगी, इल्म, वक्त, शौहर, बच्चे, घर, गर्मी, सर्दी से बचने। अब आप इसके आगे खुद से पूछें, दिल का शुक्र कितना है, शौहर की नेमत पे अल्लाह के कितना शुक्र है दिल में, वक्त की नेमत की हर चीज़ पे। फिर उसके बाद अगले कॉलम में लिखें जुबान का कितना शुक्र है, दिल का क्या कि अल्लाह के आगे शुक्र गुजार होंगे कि अल्लाह तूने शौहर दिया। जुबान का शुक्र क्या है कि उसके सामने उसकी तारीफ की जाए, उसके शिकवे ना किए जाएं, शिकायत ना की जाए। और शौहर का अमली शुक्र क्या है कि उसकी खुशी का ख्याल रखा जाए, जो उसको पसंद है वो पहने, जो उसको अच्छा नहीं लगता वो छोड़ दे, जो चीज़ उसके मिजाज की उसको लेकर चले। अल्लाह अकबर। और याद रखिए कि जिस बंदे को थोड़ी चीज भी बड़ी लगती है ना, वो बादशाह। जिसने नजर फूल पर रखी, वो तो कांटों को नहीं देखेगा ना, उसको पता है मैंने इसमें से फूल चुनना है, कांटे से हाथ बचा बच्चू के फूल चुन लेगा। तो जिस शुक्र की निगाहें फूलों पे लगी होती है ना, वो कांटों को अहमियत नहीं देते। हजरत मूसा ने क्या कहा कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह कोई भी खैर दे दे मैं तेरा फकीर हूं। हम कहते नहीं बड़ी से बड़ी दे, आला से आला दे, और छोटी को भी इंजॉय नहीं कर पाते। आपको कोई एक चीज नहीं मिली हुई जो आपका दिल था कि आज मिलती, आज 10 चीजें मिली हुई है ना, आप उसको छोड़ देंगे, रोएंगे कि वो क्यों नहीं मिली। बात सफा माएं बच्चियों के साथ शॉपिंग करने जाती हैं या बच्चियां मौके से, 10 चीजें माँ ले देगी, आखिर में एक नहीं लेके देगी, तो वो उस एक के ठुन ठुन पे घर बैठा रोएगी, आएगी वापसी पे और वो थैले पकड़ पकड़ के फेंकेगी कि ये मुझे नहीं पसंद। ये ना शुक्री की बात है। तो आपको शुक्र और हिकमत का कॉम्बिनेशन समझ आ गया, एक दूसरे में ऐसे घुले मिले फर्क है, अल्लाह ताला यही चाहता है। लेकिन साथ अल्लाह खुद भी कहते हैं कि कलील मिन इबादी यशकुर, मेरे बंदे बहुत कम शुक्र वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफीक दे, शिर की तौफीक ना दे और हिकमत दे। ये किसी का सवाल है कि सारे सबक का खुलासा दुआ है, यानी सवाल क्या कि क्या हर किस्म के इल्म के लिए नमाज कजा कर सकते हैं? कोई तो ये कहता है कि नमाज छोड़ सकते हैं। जिनका सवाल मेरी उस बात पे है गालिबन जो हमने जोहर की नमाज के लिए किया था, हर किस्म के इल्म के लिए कैसे कर सकते हैं? अकल तो यही कहेगी कि देखो दुनियावी इल्म सीख रहे हो फायदा होगा, लेकिन जिस लिए नमाज पढ़नी है, उस रब के लिए जो जिक्र हो रहा है, यानी आप कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि अल्लाह का कुर्ब मिले। तो आप इसको दुनिया की किसी चीज से तो कभी भी रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो बाकी इंसान अपनी हर तरह की कोशिश करे। अब एक शख्स है, मिसाल दे रही हूँ, सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, मुझे रियल सिचुएशन नहीं पता, आज के दिनों की मिसाल ले लीजिए, और ये भी आपको मैं हिकमत ही से जोड़ के दिखाना चाहती हूँ। एक सर्जन है, ऑपरेशन करने लगा है, लेट सी अगर उसका ऑपरेशन जिस पेशेंट का वो करने लगा है उसका एक टाइम असाइन था, वो कहते हैं कि तुम्हारा ये ऑपरेशन जो है ये 12 बजे शुरू होगा, लंबा ऑपरेशन है, वो 6 घंटे जाएगा, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है? होते हैं ऐसे कि ऑपरेशन, अब 6 घंटे का ऑपरेशन है, 12 बजे है, और 12 बजे ना तो भी जोहर का वक्त शुरू है, ना असर ना मगरिब, और इन 6 घंटे में 4 नमाजें आनी है, अब वो क्या करे? क्वेश्चन है ना। अब आप इसको ले, आप अपने ऊपर लें या किसी इंसान को भी सोचें, अब इसमें जितनी फितरत सलीम होगी ना, जितना अल्लाह ताला की कुर्ब होगा ना, तो वो जिसने भी उसको उस ऑपरेशन पे असाइन किया ना, उनसे रब्ता रखेगा, वो बता देगा कि इस टाइमिंग के ऊपर अगर इस ऑपरेशन को पोस्टपोन करके इसको रात में कर लें, 6 घंटे पहले या इससे 8 घंटे पहले कर लें, ताकि हम फारिग हो चुके हैं। वो कर सकता है, ये करना चाहिए, जितनी बड़ी हिकमत होगी वो करेगा। ये जो इंसानों में फर्क है ना, कोई कहता नहीं कर लो शराब बिकती है, हम बेचते हैं, हम पीते थोड़ी हैं, चलो धोते ही हैं उठाते ही हैं, चलो कई लोग हैं ना, चलो हम सूद लेते नहीं देते ही, ये सब हिकमत की कमी है और ये अक्ल की होशियारी है। आज जॉब कहाँ मिलती है? अब मियाँ ने अगर ये जॉब छोड़ दी तो क्या होगा? आज फेंकिए, अल्लाह आपको इससे बड़ी जॉब देगा। जितना तकवा है, अगर ये सब कर सकते, अब वो तो कर ले, बिल्कुल करे, मान लिया। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं था, आप अपने हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप मिसाल है कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इतने में एक इमरजेंसी आ गई, जो शख्स अगर फौरी आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे तो उसकी जान जाएगी। अब आप क्या, नो एक्सक्यूज, नो टाइम, नो दिस दिस, अब क्या करेंगे? अब आप उसके ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। हर बंदा खुद बेहतर जानता है कि इस वक्त क्या करना है मुझे और क्या छोड़ना है। और मैंने देखा है कि जो भी इंसान की तरजीह होती है ना, अल्लाह ताला उसको फिर उस पे आजमाता नहीं है। ये हमारा ढील मिल यकीन है जो हमें अल्लाह की तरफ से आजमाइशों में डाल देता है। कभी भी किसी इंसान को आप देखें, एक बंदा वो कहता है नमाज ना भी पढ़ो तो खैर है, दिल की नमाज है, दूसरा कहता है नहीं घर में पढ़ लो, तीसरा कहता है मैं तो जमात से पढ़ता हूँ, एक चौथा है वो कहता है जमात नहीं मैं मस्जिद में जाके पढ़ता हूँ, ये फर्क किसका है? जमात वाला ज्यादा हकीम है, क्योंकि उसको आखिरत दिख रही है, वो लॉन्ग टर्म फैसले कर रहा है कि मैं एक के बदले में 27 क्यों छोड़ूं, 26 क्यों छोड़ूं। दूसरा वो आखिरी कोने पे खड़ा कहता है पढ़ लिए ना चुप करके बैठो, क्यों चुप करो कि चलो बेनमाजी होने से तो बच गया हो ना। तो हिकमत मांगनी है, और हिकमत के साथ शुक्र जब आता है तो बस फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपको किस तरह चुनता है। और वाकई अल्लाह ताला से दुआ करने की भी ये जरूरत है कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इन सारी चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यहां पे ये सबक पूरा हुआ।
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ